జయ గురుదేవం జయ గురుదే
జయ గురుదేవ
ఓం అశరణ శరణ శరణ ప్రభులే
ఓం అశరణ శరణ శరణ ప్రభులే
ఓం జయ గురుదేవం జయ గురుదే గురు రాఖహి జో కోప విధాతా గురు రూఠే నహీ కో జగ త్రాతా గురు కే వచన ప్రతీతన జాయి सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
भगवान का नाम ही वह सेतु है जिस पर चढ़कर मनुष्य भाव सागर पार हो जाता है। नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ भाव सागर तरही। नाम के प्रभाव से योगी लोग जग जाते हैं। नाम जीह जप जागहिं जोगी विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। महापुरुष कबीर का भजन नाव बिछ नदिया डूबी जाए इसी आशय को पुष्ट करता है तथा इसी पद के पंक्तियों की क्रमिक आध्यात्मिक व्याख्या परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की वाणी में आपके लिए इस प्रस्तुति में मुखरित हो रही है।
सदैव घटनाएं घटती रहती है कि जहाज डूब गया, बेड़ा डूब गया, नाव डूब गई। अनादिकाल से आज तक ऐसा नहीं सुनने को मिला कि नाव के बीच में नदी डूब जाए, लेकिन ईश्वर पथ में ऐसा ही है। और ये भव सरिता नियम ही नौका है। यदि नियम भली प्रकार पार लग गया है मन से इंद्रियों का संयम और संयम के साथ चिंतन भजन का नियम पार लग गया तो एक दिन ऐसा आता है कि इसी के अंतराल में भव सरिता सिमट के समाहित होके समाप्त हो जाती है। जो डूब गया माने मर गया सदा के लिए, जीवन लीला समाप्त हो गई। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है और कबीर कहता है कि डूब जाता है। बात एक ही, चाहे सूख जाए चाहे मिट, तब भी मिट गया, डूब गया तब भी मर गया, बात एक ही है। संसार नाम का कहीं समुद्र तो भरा नहीं है। आपकी मन इंद्रियों की चेष्टाओं का नाम ही समुद्र है। जिन्होंने इन मन इंद्रियों को संयमित कर लिया उस संसार से, संसार सरिता से, भव सिंधु से, भवकूप से पार पा गया। संसार एक ही है, उसके कई नाम क्यों? इसलिए कि जब हम कुछ नहीं करते तो अथा भव सिंधु, भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम जे करते। अथा भव सिंधु में वे लोग पड़े रहते हैं जो प्रभु के चरण कमलों में प्रीति नहीं करते, अर्थात कुछ भी नहीं करते, तो अथा भव सागर है। राम कथा भव सरिता तरणी, तो जब हम राम की कथा अर्थात ब्रह्म विद्या जब हम पकड़ लेते हैं तो कथा बहुत सरिता से तरने वाली होती है। वो अथा सागर जब राम की कथा जागृत पकड़ में आ जाती तो सरिता हो जाती। यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेन पर ही भव कूपा। और फिर भगवान के चरित्र का सतत चिंतन जो करेगा, गायन का मतलब है सदा चिंतन करना, गाना गाना नहीं, सदा चिंतन करना। ये गायन श्वास से होता है, भजन से होता है, वो भव कूप में नहीं गिरते। और एक इस तरह ऐसा भी आता है वो अथा भव सागर कुआ हो गया, कुछ नहीं करते हैं सागर, प्रभु के प्राप्ति की कथा मिल गई उस टाइम न दिया है और चरित्र चिंतन में लग गए तो भवकूप है। और गोपद सिंधु, और जब प्रभु की कृपा वर्ष पड़ती है तो गोपद सिंधु। गरुड़ सुमेर रेणु समतहीं, राम कृपा करि चितवा जाहीं, गरल सुधा रिपु करहीं मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ जी सुमेरु पहाड़ रजकण के समान, राम कृपा करी चितवा जाहीं, प्रभु यदि कृपा करके देख ले तो सुमेरु पहाड़ रजकण के समान, अथा भव सागर गाय के बने हुए खुर के समान, गोपद सिंधु अनल सितलाई। और त्रेतापों की ज्वाला में इस विषया अग्नि में शीतलता आ जाती है, ये फिर नहीं स्पर्श करती कब, जब प्रभु कृपा करके एक दिगा देख लेते। तो गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरल सुधारी पुकरे मिताई, संसार का विषय रूपी विष अमृतम बदल जाता है, कारण कि स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाता देख धरे धनु बाना, न तो स्वर्ग स्वर्ग के रूप में रह जाता है, न नरक नरक के रूप में रह जाता है जिससे हम भय करें, जहां भी दृष्टि पड़ी अपने आराध्य देव को खड़ा पाए तो विषय रूपी विष कहीं है ही नहीं। तो गरल सुधा रिपु करें मिताई, गोपद सिंधु अनल सुतलाई, किसके लिए कि गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। गरुड़ जी और भगवान कृपा करके देख ले तो गोपद समुद्र है, विष अमृत है, सुमेरु पहाड़ रजकण है, सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है। भजन का स्तर हमारा इतना उन्नत हो कि प्रभु करुणामय प्रभु अनुकूल हो जाएं, कृपा करके हमें देखें, तब समुद्र उतना ही जितना गोपद। गोपद का अर्थ गाय से बना हुआ पांव का खुर का गड्ढा नहीं, गो माने मन से इंद्रियों का है। फिर उस वक्त मन से इंद्रियों का जितना आयतन है उतना ही संसार है, बाह्य संस्कार शांत, कोई संस्कार कोई संग दोष बाधक नहीं होता जब प्रभु करुणा करके देखने लगते। और आगे एक समय ऐसा ले आता है कि नाम लेत भव सिंधु सुकाई, गोपद ही सही गड्ढा ही सही, हाथ यदि पांव झटके में पड़ गया तो मोच जरूर खा जाएगा, पट्टी बांधनी पड़ेगी, खतरा। लेकिन एक समय ऐसा ही आता है और नाम जपते जपते, बारक नाम जपा जग जेउ, होई तरण तारण नर तेउ। बारक माने एक बार, जो कल हमने बताया था, जहाँ एक नाम एक केवल शब्द की अवस्था जिस क्षण आई तो हमने नाम को वास्तव में लिया, तो नाम ले तो भव सिंधु सुकाही, उस वक्त वो स्वयं तर जाता है, तारने की शक्ति आ जाती है, उस नाम के प्रभाव से भव सिंधु ही सूख जाता है। अब डूबने का, रपटने का, गिर पड़ने का कुएं में, बह जाने का नदिया में कोई खतरा नहीं। विविध दृष्टिकोणों से महापुरुषों ने इस संसार की अगाधता को संबोधित किया है। गीता में संसार सागर, मेरा जो भक्त समर्पित है उसको मैं संसार सागर से पार कर देता हूं, सागर ही कहा। ऐसे ही कबीर का कहना है, यदि भली प्रकार मन सहित इंद्रियों से सिमट कर यदि इस नियम रूपी नौका का अनुष्ठान करते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा इस नियम के अंतराल में, नियम की परिपक्व अवस्था काल में ये भव सरिता ही इसके अंतराल में डूब जाएगी। तो नदिया कौन, भव नदिया, तो नदिया डूबल जाए, नाव बिच नदिया डूबल जाए, तो भला कैसे डूबेगी, नियम का परिपालन करें तो कैसे। अनायास डूब जाती है कि क्रमशः, इस पर कहते हैं एक ही अचंबा ऐसन देखा कुएं में लागी आगी। हमने कहा नहीं भव कूप है, इस संसार रूपी कूप में, इस संसार में रहते हुए इसमें योगा अग्नि का संचार हो गया। एक तरफ विषय अग्नि जो हमें जलाती है, योगा अग्नि हमारे विकारों को जलाती, संसार के संस्कारों को जलाती है। तो इसमें रहते हुए अभ्यास इतना उन्नत की कुएं में लागी आगी। ज्ञान अग्नि ही दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञान योग पर्याय समझो। तो जहां ज्ञान की अग्नि योग की अग्नि का संचार हुआ, कुएं में लागी आगी, उसके प्रभाव से पानी पानी जल गया, विषय रूपी बारी सदा के लिए मिट गई, समाप्त हो गई। ता मछली खेले फाग, राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाय मुनि सो प्रबीना। भक्ति रूपी जल में जो मन मछली हो रहा था, भक्ति में कष्ट ही कष्ट था, लेकिन विषय रूपी बारिश सदा के लिए जल गया। योग की ये परिपक्व अवस्था में जिस क्षण पहुंचा, विषय रूपी बारी है ही नहीं जिससे हमें खतरा पैदा होता था, तो मछली खेले फाग, तो भक्ति रूपी रस में जो मन मछली हो रहा था वो किलोने भरने लगता है, आह्लादित हो जाता है, सदा बहार सदा वसंत खेलने लगता है। फिर उसके जीवन में कोई दुख नहीं। एक अचंभाय ऐसन देखा बंदर दूहे गाय, सर्वश्रेष्ठ है वैराग्य रूपी हनुमान, अनुराग रूपी अंगद, साधन रूपी जामवंत, ब्रह्माचरणमयी प्रवृत्ति बांधी सेना। अंत में असुर सर्वथा मर जाते हैं, उस वक्त संपूर्ण ब्रह्माचरण जो मर गए थे अथवा नहीं जामे थे वो सब जग जाते हैं, सचेत हो गए। सुधा वृष्टि भई दोहदल माही, उठे भालू कपि निश्चर नाही, जितने मरे थे इतने दिन की लड़ाई में सब जिंदे हो गए अमृत की वर्षा गिरने से। ये मानस है, जब उस अमृत तत्व मृत्यु से परे केवल आत्मा है, परमात्मा है, वो अजर अमर है, शाश्वत है, अमृत है, जहां मृत्यु नहीं है, उस अमृत तत्व अविनाशी परमात्म तत्व का जब सूत्रपात होता है, आसुरी संपद सदा के लिए शांत, देवी संपद विकसित, यही उठे भालू कपि निश्चर न। तो एक अचंबा हमने देखा बंदर दूहे गाय, और ब्रह्म आचरणमयी प्रवृत्ति ही बांदरी सेना है, उसमें वैराग्य रूपी हनुमान यही बंदर है। तो तीव्र वैराग्य के द्वारा दूहे गाय, गो माने मन से इंद्रिय, इनको दूहता है। तो ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म आचरण के द्वारा जो ब्रह्म की अनुभूति है, ब्रह्म विद्या है, वही बानर है। जिसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान का संचार, वही बानर है। ये आध्यात्मिक शब्दकोश है, महापुरुषों के प्राइवेट शब्दकोश है, बाहर वालों के लिए जल्दी पता ही नहीं चलता। तो बंदर दूहे गाय, वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म की अनुभूति रूपी बंदर दूहे गाय, तब जब कुएं में आग लग गई तब, योगाग्नि प्रज्वलित हो गई तब ने ब्रह्म ज्ञान आया। तो दूहे गाय गो माने मन से इंद्रियों के अंतराल से दुग्ध प्राप्त करता है। तो दूध दही तो अपने खावे, घी अपना रस जाए, नाव बिच नदिया डूब जाए। जहां इंद्रियों का संयम सही हुआ और कुएं के आगी लगी और ब्रह्म ज्ञान का सूत्रपात हुआ, तां फिर वो ज्ञान इन मन सहित इंद्रियों के अंतराल से ही ब्रह्म पीयूष को प्रदान करेगा। यही है दुग्ध, यही है सार तत्व। तो जो प्राप्त करता है दूध, ज्ञान का प्रतीक है, दही ध्यान का प्रतीक है, और ज्ञान और ध्यान की मस्ती तो स्वयं भोगता है, और लेकिन जो सार तत्व है परमात्मा, वो काया रूपी काशी में संग्रहित होता चला जाता है। और भिया बनारस जाए, नाव बीच नदिया डूबी जाए, यदि भली प्रकार नियम का अनुष्ठान करते जाओगे, एक दिन ऐसा ही आता जाएगा, सनेस में नदिया डूबती चली जाएगी और सर्वथा डूब जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इसीलिए भजन किया जाता है। तो एक ही अचंभा ऐसन देखा। गिरगिट गौने जाई, भला गिरगिटान देखा वो क्या खाक गौने जाएगा, गिर गिर के संभलता जाए। प्रभु की मंजिल मिलती है उसको जो तूफानों से लड़ता है, चाहे प्रलय के बादल गिरे हो घिरे हो, आगे ही आगे बढ़ता है। ईश्वर पथ फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का रास्ता है। बहुत महात्माओं को जहर मिला, दयानंद सरस्वती को जहर मिला, एक नाथ ज्ञान संत ज्ञानेश्वर, अनंत महात्माओं के जीवन में कहीं न कहीं खतरा अवश्य है। विश्वामित्र की 3 बार दुर्दशा हुई, सिंगी की भिंगी कर डारी, पारासर के उधर बिदार, तो ये संघर्ष आएगा माया का सामना, वो आपको धकेलेगी, खींच देगी, धक्का दे देगी, गिरा देगी। तो गिर गिर के संभलता जाए, हर धक्के पर उस सजग होता जाता है, हिम्मत नहीं हारता, लाख मुसीबतों के बावजूद भी अपने अपने टेक से चलायमान नहीं होता, लक्ष्य से चलायमान नहीं होता। जिसकी वृत्ति जिसकी श्रद्धा, वो गिर गिर के संभलने वाला पथिक गिरगिट, गिरा और फिर उठा, गिरा और फिर संभला, हर ठोकर पर और चौगने चाव से और अनुराग से। प्रभु हमने भजन करना ही नहीं जाना, जैसा रोग था वैसा हमने इलाज ही नहीं किया, सब दोष हमारा ही है। इस तरीके से अपने को फिर संबोधित करके फिर आगे बढ़ जाता है, जो गिर गिर धक्का धुक्की में जो हताश नहीं होता, गिर के और फिर संभला, गिरगिट गिरा और संभला। तो गिरगिट गौने जाई, वो अपने आत्मस्वरूप की ओर गमन कर जाता है, परम प्रिया परमात्मा के पास, परमात्मा की ओर बढ़ जाता, उनके पास चल जाने लगता है। तो 16 गज की साड़ी पहने गौने जाना, तो कुछ सिंगार साज चाहिए, 16 गज की साड़ी पहने, सत्य ही साड़ी है, सत्य केवल आत्मा है, 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण, मन का संसार, 10 इंद्री, मन बुद्धि, चित अहंकार 14, और परमात्मा का तेज, तेजस्य और पराग, और वो तेज एक पराग के रूप में है, अनुभव गम्य है, देखने दिखाया जा सके ऐसा नहीं है। ये 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण, अंतर जगत है। इस संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में सत्य रूपी साड़ी को धारण करके जाता है भगवान की ओर। यदि अंतःकरण में सत्य परमात्मा की आभा नहीं आ गई तो वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो 16 गज की साड़ी पहने पूछे उघारे जाए, नाव बिच नदिया डूबल जाए। 16 गज की साड़ी पहना, अभी पूछ उघाड़ी, वो तो पहुंच जाता पहन के अपने 16 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण है, उसमें सत्य रूपी साड़ी को भली प्रकार धारण करके अब अंतःकरण में दूसरे स्फुरण, दूसरे चिंतन, दूसरे संस्कार नहीं रह गए, तब वो तो पहुंच जाता, गमन कर जाता प्रभु के धाम में। किंतु पूछ उगाड़े जाए, आज पीछे लोगों के लिए रिकॉर्ड छोड़ जाता है। आज भी लोग कबीर का नाम लेते हैं, तुलसी का नाम लेते हैं, सूर का नाम लेते हैं, मीरा का नाम लेते हैं, पूछल्ला आज भी उघाड़ा ही है, उसी को पकड़ के लोग अपना महाराज का प्रशस्त करते हैं, उनके उपदेश, उनकी जीवनी सबके सामने। एक आदमी का नाम बेसहूर रहा, ब्याह हो गया तो मेहरिया बहुत बिगड़ी, बोले अरे हमारे सामने आपको बेसहूर कहा जा रहा है, डूब मरने की बात है, ऐसा अपमान मैं नहीं सह सकती, जाओ अपना नाम बदला के आओ। तो बोले अरे भैया, माँ बाप ने प्रेम से जो रख दिया ठीक है, नाम तो एक संबोधन है, इसमें क्या भला और क्या बुरा, माता पिता को यही प्यारा लगा होगा रख दिया। बोले ना बदलवा के आओ, नहीं तो कुएं में कूद के प्राण दे दे। पड़ा गरीब संकट में, नाम बदलाने के लिए चला, यारे रोड धर के तो आगे गया, तो एक आदमी गड्ढा गुड्ढी में तिन्नी झाड़ रहा था, तिन्नी जानते हैं, धान का नाम है, उसको बांदा जिला में फसही कहते हैं। स्वाभाविक धान ऑटोमेटिक गड्ढा गुड्डी में जाम जाता है बरसात में, उसको तिन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो झाड़ रहा था, झाड़ रहा था, तो बोले अरे भैया क्या कर रहे हो? बोले तिन्नी झाड़ रहा हूँ। बोले क्या करोगे? बोले घर में खाने का ठिकाना नहीं है, ले जाके कूट काट के लड़कों को खिलाऊंगा। बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले कि धनपत। तो बोले ओ ये नाम भी नहीं ठीक, धनपत माने कुबेर, धना अध्यक्ष और सुबह शाम का ठिकाना नहीं, ऐसे नाम को लेके हम ओढ़ेंगे बिछाएंगे। हाँ आगे बढ़ा तो एक आदमी भागा जा रहा था, हट्टा कट्टा लंबा तड़ंगा। बोले अरे भाई क्यों भाग रहे हो, क्या बात है? तो बोले रुको रुको रुको, बोले हमें फुर्सत नहीं रुकने की, हमें भागने दे भैया, हमें रुको ना, हमारे भागे में भलाई है। बोले आखिर बात क्या है कि दो आदमी मारे का धमकाए हैं? बोले तुहार ठोकाई करो। तो बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले रणसूर। तो बोले ओ रणसूर, ओ खाली धमकाए से? बोले ये नाम भी नहीं ठीक। तीसरे कोर्ट में गया तो एक अर्थी उठी, राम नाम सत्य है, और 200-250 आदमी साथ में। बोले भाई बड़ा हंगामा है, कौन थे? बोले अरे गांव के सरपंच रहे, बड़े सुयोग्य रहे, बहुत अच्छे थे। तो बोले कैसे गिरे मर गए? तो बोले ये पेड़ से गिरे और मर गए, तत्वन तोड़ने चढ़े थे और गिरे और रपटे और मर गए। उम्र बोले 32 साल। बोले नाम क्या था? बोले अमरनाथ। बस लौट आया, अमरों का नाथ, तो ना आधी उम्र में चढ़ बस। तो मेरिया पूछी कि नाम बदलाया? बोले का बदलाएं, धनपत भैया तिन्नी झाड़े भगे जाए रणसूर, अमरनाथ सरगे चले चले गए, अमहिन भल बेसहूर, ससुरी तुरे आंखी के सामने जिंदे तो हैं। बस हाँ, तो नाम के लिए जो लोग रात दिन दौड़ कर रहे हैं ये गलत, कितना बढ़िया टाइटल अपने आगे रख लो गलत, आचरण करो रिकॉर्ड पीछे छूट जाएगा, वो आपका नाम है। तो महापुरुष जब दुनिया से अंतःकरण में 16 तत्वों के सूक्ष्म शरीर में सत्यमात्र परमात्मा की जब साड़ी, सत्य रूपी साड़ी को जब धारण कर लेता है, अन्य संकल्प प्रसंस्कार जब शांत हो जाता है, उस वक्त वो तो परमात्मा के धाम पहुंच जाता है। पूछल्ला आदि उघाड़ा है, उनका नाम उनका रिकॉर्ड है, तो उन्होंने और उनका जीते जी नाम पता नहीं कहा रहा, किसी का कबीर हुआ तो किसी का सुर हुआ, लेकिन आज मीरा का नाम अभागिन डाले रहा वो करसास, लेकिन आज उस सास को कोई नहीं जानता, इन महापुरुषों का नाम है। इसलिए नाम मत करो बल्कि आचरण करो। मनुष्य जो अपना पद चिन्ह रिकॉर्ड छोड़ जाता है और जो समाज के प्रयोग में आ जाता है, सहयोग में आ जाता है, कोई है नाम। तो 16 गज की सारी पैनी पूछे उघारे जाए, नाव बिच नदिया डूबल जाए, एक अचंबा ऐसन देखा मुर्दा रोटी खाई, सनकारे से बोलत नाही मारे ते चिल्लाए, नाव बिच नदिया डूबल जाए। एक आश्चर्य हमने देखा जो कभी नहीं देखा, ऐसा एक घनघोर आश्चर्य देखा कबीर ने कि मुर्दा रोटी खाए, भला मुर्दा और रोटी खाए? जीवत में मरना भला जो मर जाने कोई, मरने से प्रथम मरे अजर अमर सोई हो, जीते जी मर जाए, जो मरने की विधि जाने कोई और मरने से पहले मरे, शरीर छूटने से पहले मर जाए अजर अमर सोई हो। वास्तव में मन मरा माया मरी हंसा बेपरवाह, जाका कछुन चाहिए सोई सा हंसा। तो शरीर की मृत्यु मृत्यु नहीं, ये तो कलेवर वस्त्र का परिवर्तन है, आज छूटा कल दूसरा कुछ मिल जाएगा, कर्मों के अनुसार संस्कार के अनुसार। वो तो पुनरपि जननम, यदि छूटा तो फिर जन्म होगा, किंतु यदि जीते जी मन और मन के अंतराल के संस्कारों की रील जा मिट गई, ये शुद्ध मृत्यु है जिसके पीछे जन्म नहीं। कोई जन्म सराहनीय है जिसके पीछे मृत्यु नहीं, वही मृत्यु सराहनीय है जिसका पुनः जन्म नहीं, और ये जीते जी ही होता मरने के बाद नहीं। अवधु जीवत में करे आसन, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा, यदि जियत मन बस हुआ नहीं तो पुनि देवे बहुत त्रासा, जहां आशा जैसी जैसी आशाएं तहां वासा, वहीं जन्म मन का यही तमाशा। इसलिए शुद्ध मृत्यु है मन की मृत्यु, मन के अंतराल के संस्कार और संकल्पों की मृत्यु। तो एक ही अचंबा ऐसे में देखा मुर्दा रोटी खाए, जब मन मृत प्राय हो गया तो आप रोटी खाए, इस शरीर का भोजन रोटी दाल है, शरीर का पोषण है, लेकिन आत्मा की खुराक रह की धारा में रमण करना, श्वास में रमण करना, भजन ही भोजन है, वो आत्मा की खुराक है। फिर इस आत्मा को सदा सदा के लिए पूर्ण तृप्त पूर्ण शबन शाश्वत जीवन अनंत धाम प्रदान करता है वो भोजन, भजन ही भोजन। तो रह की धारा में रमण करना, श्वास ऊपर गई तो रा बाहर आई तो मैं केवल शब्द मात्र रह गया, कब जब मन सब और से सिमट के मृत प्राय हो गया तो मुर्दा रोटी खाए, वो आत्मा की जो विशुद्ध खुराक है आपका जो निजी भोजन है वो प्राप्त करता है, उसको भली प्रकार सेवन करता है, खाने में सफल है। और जब तक जिंदा था चकपक चकपक भाग रहा था, तब तक रोटी कहाँ भजन कहाँ। तो मुर्दा रोटी खाई वो रह की धारा में रमण करता है, वो शुद्ध भजन में प्रवृत्त है, जो आत्मा की खुराक है उसे सेवन करता है। और सनकारे से बोलत नाही, कितना ठोको बजाओ नहीं बोलेगा, कोई प्रभाव नहीं, उसको गाली भी दे दो तो उसको पता नहीं चलेगा, भला कहो बुरा कहो, रजपूत कहो अवधूत कहो जुलाह कहो, कोई फर्क नहीं। किंतु एक जगह चिल्लाता है, मारे ते चिल्लाए ना वो बिच नदिया डूबी जाए, कोई संग दोष जब इंद्रियों में विकार जागृत कर देता है, ये सबसे बड़ी योगी के लिए मार है, मारे ते चिल्ला। बल्कि महापुरुषों ने एक दोहा बताया कि निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवा, बिन साबुन बिन तेल निर्मल करे शोभा। तो मारे जब इंद्रियों में कोई विकार जब उद्वेलित हो जाता है संग दोष से, तब वो चिल्लाने लगता है, ये उनकी मार है। मार काम की है, क्रोध की है, लोभ की, मोह की, राग की, द्वेष की है, इनमें से कोई कहीं से जब ठोकर मार देता तब वो चिल्लाता है कि प्रभु बचाए रक्षा करें, मैं असमर्थ हूँ आपकी शरण हूँ। तो मारे ते चिल्ला है ना वो बिच नदिया डूबी जाए, यदि भली प्रकार सुचारू रूप से नियम का परिपालन करते जाओगे क्यों क्यों भव नदिया संग ना सिमट के डूबती चली जाएगी, एक दिन सर्वथा डूब जाएगी। एक अचंबा ऐसन देखा गधा के दो सिंग, गधा के सिंग तो होता ही उदाहरण जरूर है, रावण के एक सिर गधा का, गधा जड़ता का प्रतीक, मोह रूपी रावण, मोह के ऊपर बीच में एक मूढ़ता का सिर रहता है, वही उसको रावण बनाए रखता है। तो गधा गो माने मन से इंद्रियां, इसमें जो जड़ता है, जब तक इसमें जड़ता है, गधा जड़ता का प्रतीक है, तब तक दो सिंह द्वेत के दो भयंकर शूल विद्यमान है जो जीवों को छेदते रहते हैं। ये सिंह शस्त्र का काम करता है पशु के पास या और कोई काम आता है, जब तक जड़ता है तब तक दो सिंह, मैं अलग हूं ईश्वर अलग है, ये सही की वो सही, द्वेत के भयंकर शूल। तुलसीदास जी के ये शूल ही फांसी, शूल ही द्वेत ही माया है, जो निज मन परिहरे विकारा, तो कत द्वेत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपार। मन कई विकारों का त्याग कर दे तो द्वेत से उत्पन्न अपार संस्कृति का दुख अपार शोक भला क्यों रह जाए। संशय शोक अपार, अपार संशय और शोक द्वेत से उत्पन्न, तो हमारा संशय हमारा शोक हमारा जन्म हमारी मृत्यु ये सब द्वेत की उपज है। मन कई विकारों से का त्याग कर दे तो द्वेत से उत्पन्न अपार संशय शोक संताप भला क्यों रह जाए। द्वेत है तब तक संशय शोक है संताप, ये जीवों को बेधते रहते हैं शूल की तरह। और लेकिन मन में जब तक जड़ता है तब तक ये शूल विद्यमान रहता है। द्वेत तभी तक है, जड़ता दूर ही तो द्वेत समाप्त। तो गधा के दो सींग, तो उपाय क्या है इससे बच निकलने का, तो चींटी के गल रसरा बांधल। योगी के संयत चित को चींटी की संज्ञा दी है महापुरुषम। चित तो बहुत बड़ा है, चित एक संसार है। तुलसीदास के चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, चित इतना बड़ा जितना बड़ा संसार है। लेकिन अभ्यास करते करते ये समझ में आता है, समझ में आते आते ही समझ में आता है कि वास्तव में चित ही संसार है। तो चींटी के गल रसरा बांधल, चित ही चींटी है। उस संसार में भटकने वाला चित सिमट के जब संयत हो जाता है तो इतना सूक्ष्म हो जाता है जितना बारीक वाली चींटी। लेकिन द्वेत विद्यमान है, ऐसे चित्त में सूरत की रस्सी लगाकर खेचते अर्जुन भीम। अनुराग ही अर्जुन, भाव ही भीम है, अनुराग और भाव के द्वारा इसको खींचो तो द्वेत का शून्य समाप्त हो जाए। और फिर बाद में जब शून्य खत्म हुआ तब क्या होगा, तो एक चिमटी के मुंह तले संतों नदी नाल बह जाई। योगी के स्थिर चित्त को बारीक वाली चींटी की संज्ञा दी, और ऐसे स्थिर चित्त योगी के मुंह तेले, मुंह से जो शब्द कोश निकलता है प्रत्यक्ष दर्शन है, वो अनुभव गम्य वाणी है। उन महापुरुष की बुद्धि मात्र यंत्र है, जो कुछ कहता है परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, उनके द्वारा रेले है संचारित है। इसलिए ऐसे स्थिर चित्त योगी के मुंह तेले, मुंह से जो शब्द कोश निकलता है वो नदी नार बह जाए, वेद पुराण बन जाए, गीता रामायण भागवत बन जाए, योग दर्शन बन जाए। बड़े पापी नैया पार उतर गए, धर्मी डूबे मझधार, नाव बिच नदिया डूबल जाए। और उन महापुरुषों की वाणी में पितृ ऋण मातृ ऋण भ्रातृ ऋण लोकरीत जो ये धर्म कर्म संजोते रह जाएंगे पालते रह जाएंगे वो तो डूबे मझधार। और इनको तिलांजलि देख के उन्होंने महापुरुष की वाणी के अनुसार आचरण शुरू कर दिया वो पार हो जाएगा। लोगों की दृष्टि में वास्तव में वो पापी है, इनकी शर्म नहीं आवत, अब तो छोटे वाला लड़का दूध ही पियत है, अरे के साधु है कि उम्र है, कम से कम माई के तो मिट्टी दे देता, भजन करने निकल भर जाओ तमाम लांछन कर देंगे। और घर में चाहे भूखन मर जाओ सर को एक रोटी न दी मदद न करी। तो इसीलिए तो पापी नैया पार उतर गए, जो इन परंपराओं को तिलांजलि दे दिया समाज की दृष्टि में पाप भी बताते हैं लोग, वो पार हो गए। और धर्मी डूबे मझधार, पितृ ऋण मातृ ऋण भ्रातृ ऋण लोकरीत समाज का ऋण देश का ऋण कहते रहते हैं लोग, देशभक्ति मानव सेवा ये धर्मात्मा लोग डूबे मझधार, तो उस महापुरुष की वाणी में परमात्मा के दर्शन की जुगाड़ होता है। माया में जीवों को कुछ दिन सहयोग दे दिया तो कुछ दिन बाद वो जीव जिनको सहयोग दिया हो तो दूसरी योनि में चले गए, परिणाम असहयोगी होता है। इसलिए महाराज कहते थे शुद्ध सब दानी ही तो बने, 100 रुपया रखिए तो बदले में हाथी मांगे। शुद्ध दाता मैं हूं, मुक्ति दान देता हूँ और निष्प्रयोजन केवल उसके हित के लिए हमारा कोई प्रयोजन नहीं, साधक हमको कुछ नहीं देता। एक बार कहा गुरु का धन खाने से नरक होता है, गुरु का धन नहीं खाना चाहिए। तो सुनना था कि दो एक साधक थे, सुबह उठ के गायब हो गए और 12 बजे चले आए। बोले करे कहाँ गए रहे हो? बोले महाराज भिक्षा करने गए थे, गुरु का धन नहीं खाना चाहिए। बोले करे भीख मांगे गया रहा? बोले हाँ महाराज चेतावे गए रहे। बोले देख गुरु के ऋण से ऐसे उऋण नहीं होगे, गुरु की विद्या को पकड़ो, गुरु की लाइन पकड़ो, साधना पढ़ो, योग विधि पकड़ो और उसका आचरण करके गुरु जो विद्या का योग का जो स्तर है अधिकतम सीमा है वहां तक की दूरी तय कर लो, तो जो खाओगे वो हमारा चुकता होता चला जाएगा। इसमें कटौती किए तो भीख मांगे गुरु का कर्जा पटाई। बस उसी दिन से भ्रम दूर हुआ, साधक सब साधक तल्लीन होकर भजन में लग गए, नहीं तो फिर ऋणी रह जाओगे। तो हमें भजन की पुण्य रूपी पूंजी चाहिए तो हार यही। बस महाराज जी ने अपने पेट के लिए भी कभी भीख नहीं मांगा था, जबकि 7 उपवास, 14 उपवास, 2-3-4 उपवास तो आए दिन की घटना थी। फिर किसी को आकाशवाणी हुआ इन महात्मा की सेवा करो, किसी को स्वप्न में दिखाई पड़ा महात्मा की सेवा करो, किसी को स्वाभाविक प्रेरणा हो जाए तो लाके दे दे। कभी भिक्षा नहीं की। जब भगवान मौके साधु बनाए तो वो भोजन की व्यवस्था करे, मैं क्यों चिंता करूं। उजन एक चिंटी के मूतले नदी नार बह जाए, पापी नैया पार उतर गए धर्मी डूबे मझधार। और अंतिम पद है कहत कबीर सुनो भाई साधु यह पद है निर्वाण। निर्वाणी माने वाणी का विषय नहीं, अनिर्वचनीय, जिभ्या पर आवे नहीं निरख पर कर ले। शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विदेह है, तो ये पद निर्वाणी है। इसमें बताई हुआ जो पद है माने स्थान है वो वाणी का विषय नहीं, हम वाणी के द्वारा नहीं समझा सकते, अनुभव गम्य है। वही जानता जिसके हृदय में उजागृत हो जाए। तो ये पद है निर्वाण जो या पद को अर्थ विचारे। इस पद में बताया हुआ जो अर्थ है उस पर विचार करे, विचार करके उस अर्थ के अनुसार लग जाए। सोई संत सुजान नाव बिच नदिया डूबल जाए। वो संत वास्तविकता का ज्ञाता है, यदि तुम नियम का परिपालन करते जाओगे भली प्रकार सने सने नदियां डूबती जाएगी और नियम की परिपक्व अवस्था काल में एकदम सदा के लिए डूब जाएगी। जिस भाव से हमें चिंता थी वो समाप्त। फिर बिना गोपाल छोड़ नहीं कतहूं नरक जात धोखा हूं। ईशावासम निदम सर्वम यत किंचित जगतियाम जगत, लेश मात्र भी जगत बचाई नहीं तो डूबेगा कहां। तो सुनो भाई गप सुनो भाई सप नाव बिच नदिया डूबल जाए। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो सरासर गप, चींटी के गले में रस्सा और खेचे का अर्जुन और भीम, चींटी के मुंहते से नदी में बाढ़ आ गई, सरासर गप। और जब पानी जल गया तब मछली मस्ती काटने लगी और पानी था तब तक दुखी थी। भाई मुर्दों का रोटी खाना, गिरगिट का गौने जाना, भाई ये दृष्टि से देखा जाए तो सर्वथा गप है। लेकिन कबीर कहता बिल्कुल लेश मात्र भी गप नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, साफ सुथरा प्रशस्त पथ है। सुनो भाई सत्य अर्थात साफ साफ है, भला है क्या नाव बिच नदियां डूबी जाए। यदि आप नियम सदगुरु के द्वारा प्रदत्त नियम विधि के अनुसार पालन करते जाओगे, एक ही समय ऐसा भी आएगा कि भवसरता इसके अंतराल में समाप्त हो जाएगी। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। नाम के प्रभाव से भवसागरी सूख जाता है। सुजन लोग मन में विचार करके देख लें कबीर कहता है डूब जाता है, तुलसी कहते हैं सूख जाता है, कोई कोई कहता है मिट जाता है, कोई कहता है बहू की जगह ईशावास्यम हो जाता है। सबका आशय एक ही है, ईश्वर प्राप्ति के साथ ही प्रकृति पुरुषत्वम विलीन हो जाती है, परमात्मा इससे इस बच रहता, प्रकृति इसके अंतराल में खो जाती है, इसी का नाम मोक्ष है। तो ये अटपटी वाणी भी कबीर अटपटी नहीं है, महापुरुषों ने कभी कभी वो वैदिक तथ्य को छिपा कर प्रस्तुत किया जिससे कि अधिकारी उसे प्राप्त कर ले और अनाधिकारी दुरुपयोग न करे। कबीर का जब नाम बढ़ चढ़ गया तो बहुत से भगत दौड़ने लगे कबीर की वाणी सुनने के लिए। राजा महाराजाओं ने कबीर का उपदेश सुनने का एक प्रोग्राम बनाया था, पीरोलिया भाग भाग के उनके आने लगे। एक भगत भागा, बोले मैं कबीर से ही मंत्र लूंगा, सुना है बगैर गुरु के कल्याण नहीं, मैं अब कबीर को ही गुरु बनाऊंगा जिससे कि रास्ता हमारा प्रशस्त हो जाए, क्योंकि वो महापुरुष है, बड़ा नाम सुना है। पहुंचा काशी और सीधा जाके कबीर से ही पूछ बैठे। संत कबीर साहब कहाँ निवास करते हैं? तो कबीर ने कहा होगा कहीं कबीरवा। तो एक झापड़ मारा, बोले अरे इतने बड़े महापुरुष को कबीरवा कहता तो हर जीभ गल के गिर जाएगी। तो कबीर ने गाल उधर कर दिया, दूसरी तरफ बोले इधर भी रसीद कर दो। तो बोले अरे बड़ा निर्लज्ज है, पागल है, इसको लाज भी नहीं है, बड़बड़ाता हुआ चला गया। आगे जाके पूछा दूसरी दुकान में, बोले कबीर साहब कहाँ है? बोले वो क्या बैठे। फिर दाहिने पूछा, बाएं पूछा, आगे पूछा, पीछे पूछा, बोले वो क्या बैठे। तब निश्चय जब पक्का हो गया तब दौड़ के आया, साष्टांग दंडवत किया, बोले अरे भगवान मुझ मूर्ख से अज्ञानता बस महान भूल हो गई, कहाँ मैं मंत्र लेके आपकी शरण में आया था, कहाँ झापड़ मार दिया। बोले अरे तुमसे भूल कहाँ हुई, लोग दो पैसे की हड़िया खरीदते हैं, तीन चार बार ठोक बजा लेते हैं, कहीं सौदा कच्चा तो नहीं? तू तन मन धन सर्वस्व समर्पण करके बदले में गुरु बनाना चाहता तो ठोक बजा लिया तो अच्छा ही तो किया, कहीं सौदा कच्चा तो नहीं? एक आध बार और ठोक बजा लेना चाहिए। तो सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरन्ति मही। पृथ्वी में वही संत सुखी होते हैं, संसार के आक्षेपों को सहता बने भान खत्म कर दे, आदर और निरादर को शम करके सब संत सुखी विचरन्ति मही। ईश्वर पथ में केवल श्रद्धा लगती है, जिस भाव से सर्वभंग के पास राम पहुंचे, जिस लगन से सुतीक्ष्ण के पास पहुंचे, उसी लगन से राम सबरी के पास पहुंचे। तो यहाँ स्त्री पुरुष का फर्क नहीं है, जाति कुलीन और बेलीन का फर्क नहीं है, वहां तो केवल श्रद्धा का सौदा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति नचरेणादि गच्छति। श्रद्धावान पुरुष ही स्त्री अनुभूति ज्ञान प्राप्त करता है, श्रद्धावान और संयते इंद्रिय और समर्पित है वो ज्ञान प्राप्त करता है। और इधर ज्ञान प्राप्त करते ही तत्सन नेष्टि किम सिद्धि पराम शांति नचिरेणादि गच्छति, तत्काल परम शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है, फिर उसमें समय नहीं लगता। इधर दर्शन उधर स्थिति, इसीलिए और श्रद्धा विहीन होमा हुआ हवन, दिया हुआ दन दान, किया हुआ करण, भजन चिंतन संयम सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए भावे विद्यते देवा, श्रद्धा के साथ गुरु महाराज के निर्देशन के अनुसार साधन में प्रवृत्त हो जाओ, फिर भगवान सब अनुकूलता अपनी दर्शा देंगे और समझ भी जाओगे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान।